जहरा जनी साहिबा, एक चीज़ हम देखते हैं नौरूज़ नया साल, और लोग जो है यहाँ पर नए साल का आगाज करते हैं, लेकिन ईद नौरूज़ ये लफ्ज़ ईद भी जो है इसके साथ लगा दिया जाता है, तो ये ईद नौरूज़ इसे क्यों कहा जाता है?
देखें, ईद का जो अगर आप लुगत में उसके मानी देखें तो ईद के मानी होते हैं पलटना, वापसी। और जब इंसान के या फितरत के यानी कुदरती जो मनाजिर हैं और इंसान का यानी जो ज़िंदगी उसके सिलसिले में जब ये बात होती है तो ईद का मतलब होता है इंसान का अपनी फितरत की तरफ पलटना।
सही।
और नौरोज़ के साथ ये लफ्ज़ इसलिए भी लगाया जाता है कि एक तो बहुत सारी चीज़ें जो वाक़यात आपने सुने होंगे इस दौरान में कि नौरोज़ के सिलसिले में जो चीज़ें हैं यानी मुबारक मवाक़े आए हैं, हज़रत नूह की कश्ती किनारे लगी है, इस दिन हज़रत अली की विलायत का ऐलान हुआ है, और इस तरह की बहुत सारे, और जिस इसी दिन सूरज पहली बार चमका है, खुदा ने इजाज़त दी है उसको जब बनाया है, तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, ऐसी अहम वाक़यात हैं, उस सब की वजह से खुशी का दिन तो है ही। लेकिन ख़ास बात यह कि जो बहार का आगाज़ है उसकी वजह से दरख्तों में जो नई ज़िंदगी आती है, भाई दरख्त का मतलब जब आप दरख्त की बात करते हैं तो आपका एक बहुत ही ज़्यादा तरोताज़ा सी और ज़्यादा हिस्सा सब्ज़ चीज़, वरना तरोताज़ा और रंगीन चीज़ आपके जहन में आती, फूल पौधे ये सारे, तो जब ये पौधे ये दरख्त और ख़ुद ज़मीन अपनी फितरत की तरफ पलटती है तो इसलिए भी इसको ईद नौरोज़ कहा जाता है। हर चीज़ हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया है कि इंसान का हर वो दिन ईद का दिन है जब वो गुनाह ना करे, यानी जब वो पैदा होता है तो बिल्कुल पाक व पाकीज़ा होता है, तो उसकी फितरत जो है वो पाकीज़ा फितरत है, और ये जो अपनी ज़िंदगी में मतलब और यानी जिसे कहना चाहिए कि इत्तेदाल कायम न रख के हवस और हिर्स और शैतान के बहकावे में कह दें कि उसमें आके जो इंसान अपने में तब्दीलियाँ लाता है उनमें से वो मतलब गुनाह की तरफ उसको मायल करती हैं, तो वो दिन जब इंसान पलट के खुद अपनी जानिब अपनी सही फितरत की जानिब आता है, तो जिस तरह ज़मीन अपनी फितरत की जानिब पलटती है यानी उसमें ज़िंदगी के आसार पैदा होते हैं, जैसे पेड़ पौधे अपनी फितरत की तरफ पलटते हैं यानी उनमें से सब्जा निकलने लगता है, फूल निकलने लगते हैं, हुस्न बिखेरने लगते हैं वो, तो उसी तरह इंसान भी जब पाकु पाकीज़ा होने लगता है, अपनी फितरत की तरफ पलटने लगता है, तो वो भी हुस्न और नूर बिखेरने लगता है।
बिल्कुल ऐसा ही।
तो इसलिए जैसे दूसरी ईदें हैं कि उसे गुनाह की से पलट के अपनी पाकीज़ा फितरत की तरफ आना, इसीलिए नौरोज़ को भी ईद नौरोज़ कहते हैं, क्योंकि इसमें पूरी कहना चाहिए कि पूरी ज़मीन जो है वो अपनी फितरत की तरफ पलट रही होती है।
बिल्कुल। चलते हैं इस तरफ। ज़हरा ज़ादी साहिबा, एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगी। हम देखते हैं कि इस्लाम के बाद नौरोज़ में और भी निखार आया है, यानी नौरोज़ को सवार कर खूबसूरत बनाकर और भी पेश किया गया है, और जो मुस्बत पहलू थे उसमें उसको और भी उजागर किया गया है। तो मैं ये पूछना चाहूँगी, एक चीज़ जो हम यहाँ देखते हैं और मुझे ये बात बहुत पसंद है कि यहाँ पर जो है साल का जो आखिरी जुमेरात रहता है उसमें तमाम जो अफराद होते हैं वो कब्रों की तरफ, कब्रिस्तानों की तरफ रुख करते हैं, बहश ज़ारा जैसे यहाँ पर कहा जाता है वहाँ जाते हैं, वहाँ पर फातिहा खानी और वो अयाम या वो दिन या वो लम्हात जो हैं उनके साथ मनाते हैं जो उनकी ज़िंदगी में अब नहीं रहे। तो इस हवाले से मैं पूछना चाहूँगी, बहुत ही गलत कॉन्सेप्ट भी पाया जाता है कि ये जो है रस्म जरतुश्तियों की यहाँ से चलती हुई आती आई है और अब जो है हमारे हाथ यहाँ आई है, तो क्या कहना चाहेंगी सवाल?
देखिए, मैं इस बात को नहीं मतलब मैं गलत कहूँगी कि ये जरतुश्तियों की तरफ से आई है या नहीं आई, इसको मैं साबित नहीं कर सकती। अगर जरतुश्तियों में ये रस्म पहले थी तो बहुत अच्छी रस्म थी, और हज जो था वो पहले कुफार भी किया करते थे, तो रसूल अल्लाह ने वो हज बंद तो नहीं किया, उसकी शक्ल बेहतर कर दी है ना, उसकी शक्ल बेहतर की। तो अगर मान लीजिए कि ये जरतुश्तियों का में ये रस्म रही हो तो इस शबे जुमा को तो इस्लाम में भी इतना ज्यादा अहम करार दिया गया है। जुमेरात को इसी वजह से शबे जुमा, यानी दिन से ही इंसान इबादत की तैयारियां शुरू करता है तब शबे जुमा आती है।
बिल्कुल ऐसा ही।
तो उस दिन जब लोग अपने यानी चाहने वालों की, अपने आयजा की, अपने दोस्तों की कब्रों पर जाते हैं, तो एक तो ये कि हमारा जो मोमिन होता है वो मरता तो नहीं है, उसकी रूह तो आज़ाद होती है, तो अगर वो अपने आयजा से मिलने के लिए जाते हैं और इस मौके पर जाके वहाँ वो कुरान खानी करते हैं, और वो हमारा वो तो है नहीं कि हर चीज़ बिदत बिदत कह के आप कब्रिस्तानों से लोगों को दूर कर दें, नतीजा ये कि उनमें मौत का खौफ दूर हो जाए,
बिल्कुल ऐसा ही है।
तो दूर हो जाए तो फिर वो गुनाह करने लगे। हमारे यहाँ कहा जाता है कि आप मुर्दों के साथ जाएं, यानी कब्रिस्तानों में जाना मुस्तहब है, क्योंकि आपको अपनी मौत याद आती है और उससे आप गुनाह से बाज रहे।
बिल्कुल ज़हरा बाजी, गुफ्तगू को यहीं से आगे बढ़ाएंगे। एक खुशखबरी मेरे मुझे भी मिली है और वो ये है कि हमारे साथ फोन लाइन पर एक कॉलर थी और कॉल ड्रॉप हो गई।
चले
हम चलते हैं वापस अपनी गुफ्तगू की तरफ, और माफ कीजिएगा ज़हरा बाजी,
ये तो खुशखबरी नहीं।
चले, मुझे कहा कि बात कीजिए और ख़त्म। چلیں کوئی مسئلہ نہیں ہے, پھر سے ہمارے ساتھی رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے. جی, ہم اپنی گفتگو میں بات کر رہے تھے کہ قبرستانوں میں جانا, اور یہ کہتے ہیں کہ جانا ضروری ہے,
ضروری اسی وجہ سے کہ موت کا خوف رہے, اور اس میں آپ اپنے ساتھ بچوں کو لے جائیں کہ بچوں کو بھی یہ پتا چلے کہ آخری منزل یہ ہے. تو اس لیے دنیا میں یہ جو ہنگامے اور ہوس اور ہرس اور دولت کی طرف بھاگنا اور صرف اپنے بارے میں سوچنا, یہ بھول جائیں. ایک وہ وقت آئے گا جب ہم چار شانوں کے محتاج ہوں گے, اور قبرستانوں میں ایسے سین نظر آتے ہیں کہ معلوم ہے دوسروں سے کہا جاتا ہے کہ آپ آ کے ذرا سا شانہ دے دیں, نکندے پہ اٹھا لیں, اپنے سے ایک لوگ ہیں, ایک آدمی یا دو آدمی اس کے ساتھ میں. تو اس کیفیت کو بچوں میں بھی آنا چاہیے, بچوں کو قبرستان لے کے جائیں, اور خود جو جائیں اور وہاں جا کے جو آپ قرآنی صورتیں پڑھتے ہیں, قرآنی سورے پڑھتے ہیں آپ, یہ تو یہ سب ثواب کی چیزیں ہیں, اور یہ بہت اچھی چیزیں ہیں. اور اگر یہ جانا مثال کے طور پر اگر زرتشتیوں سے بھی آیا ہے, تو اگر زرتشتیوں کی ایک اچھی رسم تھی تو اسلام نے کبھی اچھی چیزوں کو ریجیکٹ تو نہیں کیا.
بالکل بالکل. زہرا ذاتی صاحبہ ہم اس حوالے سے بات کر رہے تھے کہ ہر چیز میں ایک تربیتی نقطہ ہوتا ہے, تو نوروز کے حوالے سے بات کرتے ہیں. نوروز میں کوئی تربیتی نقطہ ہے, اور اگر ہے تو آپ بتائیے ہمیں.
دیکھیے, تمام عیدیں جیسے میں نے بھی عرض کیا تھا کہ اپنی فطرت کی طرف پلٹنے کی بات کرتی ہیں.
بالکل.
تو جیسے زمانے کا جو رخ ہوتا ہے اس سے بہت ساری چیزوں میں تبدیلی آنے لگتی ہے. اس میں ہماری روایات میں, ہماری تہذیب میں, ہمارے آداب میں بھی بہت فرق آنے لگتا ہے. تو اگر اور کچھ نہ لیں تو ہم عید کو اس شکل میں تو ضرور لیتے ہیں کہ نوروز میں جو دسترخوان سجتا ہے اس کے چاروں طرف لوگ اس خاص وقت میں بیٹھتے ہیں, ساتھ میں وہ دعا پڑھتے ہیں. جن جگہوں پر اہتمام, زیادہ تر گھروں میں اس کا اہتمام کیا جاتا ہے, وہ دعا پڑھتے ہیں. تو ایک تو ان کا رابطہ, اور انہیں یہ پتہ ہوتا ہے کہ اس کی خاص نماز ہے, اس دن خاص روزہ, مستحب روزہ رکھا جاتا ہے جس کا بہت زیادہ ثواب ہے. تو جو لوگ بھی رکھتے ہیں, اگر گھر کے مان لیجیے کہ صرف بزرگوں میں سے ایک دو لوگوں نے رکھا, تو کم سے کم بچوں کو یہ تو پتہ چلتا ہے نا, یا جوانوں کو یہ تو پتہ چلتا ہے نا کہ یہ خدا سے رابطے کا دن ہے. تو ہم خدا سے ایک تو رابطے میں آ جاتے ہیں, دوسرے اپنے اطراف میں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ہمیں بزرگوں کی, یعنی جب سب مل کے بیٹھتے ہیں, صرف اسی وقت نہیں, دسترخوان کے وقت ہی نہیں, عام طور سے جو ملنے جلنے کا رواج ہے, تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس میں بڑے بوڑھے بچے سب شامل ہوتے ہیں.
بالکل.
سب شامل ہوتے ہیں, چاہے وہ عید فطر ہو یا عید قربان ہو یا عید نوروز ہو, جو بھی عیدیں ہوں, ان سب میں ایک دوسرے سے ملنے پر بہت زیادہ زور دیا گیا. گلے لگانا, بزرگوں کا بچوں کو گلے لگانا, اور اس طرح عیدی دینا, یہ سب کیا ہے, یہ قریب لانے کے طریقے ہیں. اور قریب آنا اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ اگر قریب نہ ہو تو پھر انسان اپنی فطرت سے, اپنے ماحول سے, اپنی روایات سے دور ہو جاتا ہے. تو یہ ساری چیزیں, اب آج کل ایک بڑا مطلب یعنی ہم نے مغرب سے جو ایک یہ مرض لیا ہے وہ یہ ہے کہ معلوم ہوا کہ آپ کسی کے گھر گئے, میں کسی کے گھر جاتی ہوں تو وہاں پتہ چلا کہ دو تین لوگ تو وہ نے اگر پہلے سے ظاہر فون کر کے گئے ہیں, وہ ہیں یہ شہر کے اندر ہی, وہ بتا دیا یہ وہ, معلوم ہوا بچے نہیں ہیں. بھائی بچے کہاں ہیں, وہ ہیں, اس کا امتحان ہے, اور وہ اپنے دوست کیا گیا ہوا ہے, اور وہ یہ چیز. اور اگر وہ گھر میں بھی ہیں تو وہ اتنے بزی ہیں, اور اگر آپ ان کے کمرے میں مثال کے طور پر چلے جائیں تو شاید اس وقت وہ اپنے انٹرنیٹ یا اس میں بزی ہوں.
بالکل.
تو بچوں کو جو بزرگوں کی اہمیت کا, خاندان والوں کی اہمیت کا جو احساس ختم ہوتا جا رہا ہے, اس احساس کو بھی پلٹوانے میں عیدوں کا بڑا ہاتھ ہوتا ہے, اور اس میں ایران میں نوروز کا اس سلسلے میں بہت ہاتھ ہے. اس طرح بچے اپنی روایات سے اور تہذیب سے آشنا ہوتے ہیں کہ ہمیں بزرگوں کو کیسے اہمیت دینی ہے, ان کی باتوں کا کتنا خیال رکھنا ہے, اور یا کہ ہم ان کے سامنے کیسے بیٹھیں, کیسے اٹھیں, وہ جو چیز منع کرتے ہیں اسے ہمیں سننا ہے.
بالکل.
تو یہ عادتیں اگر آپ ہم اپنے بچوں کی نہ ڈالیں, ہم تو اس اسٹیج سے گزر گئے ہیں, آپ لوگ اپنے بچوں کی نہ ڈالیں کہ مہمان آپ کے گھر آیا ہے, بچے کا امتحان ہے, آپ پانچ منٹ کے لیے اس کو سلام کرنے کے لیے ہی بلائیں. سمجھ رہے ہیں, اس کو پتا ہونا چاہیے. آج تو یہ حالت ہے کہ بچے اپنے رشتہ داروں کو نہیں پہچانتے.
بالکل جانتے ہی نہیں کون ہے یہ, کون ہے وہ, کون ہے
وہ, بالکل نہیں جانتے اپنے رشتہ دار. اور اگر کہیں کہیں سیکنڈ کزن کا معاملہ آ گیا, مطلب ماں کے بھائی بہنوں کے, بھائی کے یا بہن کے بچے اور سیکنڈ کزن یعنی ان کے, یعنی ماں کے کزنس کے بچے,
بالکل
ماں یا باپ کے, تو وہ تو سمجھیے بالکل مطلب وہ ان کے لیے غیر ہو جاتے ہیں. تو یہ مغرب والے یہ سب کام کر کے پچھتا رہے ہیں, ہم کو یہ پتا ہونا چاہیے. اور یہ کوئی اسمارٹنیس نہیں ہے, یہ بدتہذیبی ہے, اور یہ انسان کو اندر سے افسردہ کر دیتی ہے خاص उसमें ये जो बच्चे जवान आजकल इतना ज्यादा इंटरनेट की तरफ जा रहे हैं, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये कि हम अपनों से दूर हो गए। ये सबसे ज्यादा आसान तरीका है। हमें बनावट इतनी आ गई है कि हम जब किसी से मिलने के लिए जाते हैं तो हमें बहुत ही टिप टॉप होना चाहिए, बहुत भी साफ सुथरा होना और चीज है। हर वक्त ये कपड़े पहन के जा चुके हैं उनके घर, तो अब ये तो नहीं पहन के जाना।
अरे कौन दोहराएगा
ये सारी चीजें? जो ये जो गलत चीजें हमने अपने यहाँ शामिल कर ली हैं, इनसे अगर दूरी कर लें और हम लोगों से बिल्कुल साफ दिली के साथ मिलना शुरू करें, तो शायद हमें फिर इंटरनेट की इतनी जरूरत नहीं रह जाएगी। और इंटरनेट की जरूरत सिर्फ हमें उन चीजों के लिए होगी जिनके मालूमात हासिल करना चाहते हैं, नए नए इल्म हासिल करना चाहते हैं उससे। वरना ये होता है कि खाली घर जो होता है वो शैतान की आमाजगा होता है, और उसमें ये इंटरनेट और ये स्मार्टफोन और ये सारी चीजें बहुत बड़ा किरदार अदा कर रहे हैं। ये खास बात है।
बिल्कुल, मगरिब से हमने क्लास और स्टेटस तो ले लिया और अपने घरों से जो है मोहब्बत और कहते हैं ना वो जान पहचान और वो सिला रहीम को कहीं हम दूर करते जा रहे हैं।
बिल्कुल
जी। अच्छा, मैं ये चीज पूछना चाहूंगी, एक बहुत ही जबरदस्त रस्म हम देखते हैं ईरान में नौरोज के वाले, दीद और बौजदीद। हसन भाई ने भी इसका इशारा किया कि अगर मैं आज आपके घर आई हूँ, आप मेरी बड़ी हैं, मैं आपसे मिलने आई हूँ, तो इन्हीं 13 दिनों के अंदर आप वो बौजदीद मुझे वापस देने, यानी मुझसे मिलने वापस आएंगी। यानी पहले अब ये होता है कि अरे फोन करके चलो भाई घर पर तो है, ऑफिस में नहीं है, बिजी नहीं है, सोने का टाइम नहीं है, लेकिन ये बड़ा अच्छा एक सिलसिला यहाँ पर रहता है कि बौजीद और जब कोई चाहे तो आता है एक दूसरे के घर। क्या कहना चाहेंगी सवाल?
देखिए, इसके अपने मतलब कुछ चीजें, यानी बहुत अच्छा है कि एक दूसरे से मिलना, लेकिन ये पाबंदी कि फिर इसी 13 दिन के अंदर ही आप आए, ये थोड़ा सा जिसे कहते हैं तकलीफ दे भी हो जाता है। और कई मौकों पे ये हो जाता है कि भाई हमने तो पूरा कर दिया, बाकी साल के लिए हम फ्री हो गए, अब हम जाएं या ना जाएं। मतलब दीद आपने की, ठीक है, बहुत अच्छा किया। बाजदीद के लिए आपको मान लीजिए वक्त नहीं मिला। अब जैसे आप इस वक्त यहाँ पर हैं, ठीक है ना, तो अब हो सकता है बाजदीद आप इस 13 दिन के बाद करें, हो सकता है इसके बाद जब भी आपको वक्त मिले। तो ये दीद और बाजदीद का ये सिलसिला जो है वो अगर इस वक्त ज्यादा है तो लोगों को भी एक दूसरे की मुश्किलें समझनी चाहिए। बाजदीद को फौरी तौर पर उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, तवक्को नहीं रखनी चाहिए फौरी बाजदीद, लेकिन ये कि रिश्तेदारों से मिलने को पूरे साल जारी रखें,
इन 13 दिनों में महदूद ना करें,
महदूद ना करें।
बिल्कुल,
हाँ।
बिल्कुल,
तो इसलिए मुझे ये तो बहुत अच्छा लगता है कि लोग मिलने जाते हैं, लेकिन मुझे ये पलट के फौरी आपको पलट के जवाब देना, ये मुझे ज्यादा समय मतलब पसंद नहीं आता।
बिल्कुल, 13 दिनों को जो है अपने साल में हम तब्दील करें, बाजदीद का सिलसिला जारी रहेगा इंशाल्लाह। कोई और खास आदाब रसूमात जिनकी तरफ आप इशारा करना चाहें नौरोज या ईद के हवाले से, जिनका हमें ख्याल रखना चाहिए और पाबंदी से उस पर चलना चाहिए?
देखिए, यूं मिलना जुलना ये सारे हर जगह के लिए ये हकीकत है, ये कि हर जगह इसकी ज़रूरत है। खास रसूमात या खास गजाएं, जैसे हमारे ईद में हिंदुस्तान में कुछ और अंदाज़ है, हिंदुस्तान पाकिस्तान में बस दूसरे मुल्कों में दूसरे अंदाज से लोग मनाते होंगे, अरब मुल्कों में और अंदाज है, वो अंदाज़ अपना अपना बरकरार रखें, वरना पूरी दुनिया में एकसानियत हो जाएगी और फिर जिंदगी जो है वो बहुत ही अफसुर्दगी का शिकार होने लगती है। तो इसलिए उसको अपनी रवायात को बरकरार रखें। तहजीब जो है बुजुर्गों का अदब और ये सारी चीजें हर एक के लिए और हर जगह के लिए। एक चीज जो होती है कि इन जमानों में ये बहुत होता है कि हमें क्या फायदा किसी से मिलने से, हम क्या करें अगर कोई आया है, अम्मी अब्बू से मिल रहा है या दादा दादी से मिल रहा है या बुजुर्गों से मिल रहा है, तो हम क्या करें? देखिए, आप यहाँ पर आएंगे तो आप जब बुजुर्गों की बातों को सुनेंगे तो आपको बहुत सारी पिछली चीजें पता चलेंगी। आप सवाल भी कर सकते हैं उन रवायात के बारे में, रसूमात के बारे में, ये साइड में तो क्यों है, जो तजुर्बा उनके पास है उसे हासिल करें, जो तारीख खानदान की उनके पास है वो हासिल करें। क्योंकि एक स्टेज जिंदगी में ऐसी जरूर आती है जब इंसान चाहता है कि उसे पिछले लोगों की कुछ बातें पता हो और फिर उसका कोई बताने वाला बुजुर्ग नहीं होता, एक चीज। और दूसरी चीज उसमें एक ही जाती फायदा ये होता है कि इंसान कभी तन्हाई का शिकार नहीं होता। जो लोग लोगों से एक दूसरे से मिलते जुलते रहते हैं, फिर अगर उनकी बीमारी का, उनके मतलब किसी भी वजह से उनके किसी भी बुरे हालात का लोग सुनते हैं या उनकी तन्हाई का लोग सुनते हैं, तो लोग उनसे मिलने आते हैं, उन्हें तन्हा नहीं छोड़ते। इसके अलावा एक चीज ये भी होती है कि जब आप ज्यादा मिलने जुलेंगे तो बहुत सी गलतफहमियां दूर हो जाती हैं। एक चीज जो आप बहुत सीखेंगे हमारे जवान जो बुजुर्गों के सामने, मान लीजिए कि आप मेरे सामने आती हैं, मैंने आप पर कोई एतराज किया, उसको बुरा मानने के उसमें शक्ल में ना लें, उसमें देखें कि मैं अपने जमाने के मुताबिक बात कर रही हूँ जो गुजर चुका है, या ये कि मतलब जमाने में उसको बुरा समझाया जा रहा, फैसला आपके हाथ में, लेकिन ये जो आपने मेरी बात को अदब से सुना चाहे वो ज्यादा अच्छी नहीं लगी तो आपने बर्दाश्त किया, तो ये बर्दाश्त का मादा जो है ये इंसान के लिए जिसे अंग्रेजी में कहते हैं बहुत पेइंग होता है, इसके उसे बहुत फायदे पहुंचते हैं। जिस इंसान में भी बर्दाश्त ज्यादा होती है اور دوسروں سے اس کی توقع کم ہوتی، وہی زندگی میں کامیاب ہوتا ہے ہر رشتے کے لیے، وہ دوستوں میں، وہ رشتوں اپنوں میں، وہ بزرگوں کے ساتھ، وہ ماں باپ کے ساتھ، وہ شوہر بیوی کے درمیان، بھائی بہن کے درمیان، ہر رشتے میں یہ قانون بہت زیادہ مؤثر ہوتا ہے کہ دوسروں سے توقع بہت کم رکھیں، انہوں نے میرے ساتھ یہ نہیں کیا، وہ مجھ سے اچھے سے نہیں ملے، میں کیوں ملوں، یہ نہیں بلکہ توقع ان سے، اگر انہوں نے آپ کو مسکرا کے دیکھ بھی لیا تو آپ خوش ہو جائیں، اور ان سے توقع نہ رکھیں، اپنے میں برداشت کا مادہ زیادہ پیدا کریں، یہ ساری عمر آپ کے کام آئے گا.
بالکل ایسا ہی کہتے ہیں کہ جو سنجیدہ افراد ہوتے ہیں وہ تجربے کا ایک ذخیرہ ہوتے ہیں، اور ان سے صرف ہم سیکھ ہی سکتے ہیں. اب ان کے ساتھ جو بھی اس زمانے میں ہوا وہ ہم اس زمانے میں خود ہم سیکھ کر اور جو اپنی زندگی میں لاگو کر سکتے ہیں. آپ کا شکریہ ادا کرتی ہوں، زبردست گفتگو رہی آپ کے ساتھ ہمیشہ کی طرح، اور ہمارے پروگرام کو آپ نے اور بہارانہ کر دیا آج، میں یہ کہوں گی. بہت شکریہ آپ یہاں تشریف لائے، آپ سے خدا حافظی کرتے ہیں.